हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 33 एंड 34। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभरधारुण बिंबफलधरोष्ठा पुरेन्द्रसुंदरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। यं प्रव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति दीशतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद, दूसरा अध्याय, दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 33। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूची बता रहे हैं, असौ गुणमय भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असौ गुणमयैर्भाव भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। शब्दों का अर्थ देखिए, असौ गुणमयैर् भावः। असौ मतलब वह परमात्मा, जो परमात्मा की बात हो रही है ना पिछले श्लोक में, जैसे हमने 32 में पढ़ा, यथा ह्यवहितो वह निर्दारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। के इस संसार में जितने भी नाना भाति के जितने भी जीव हैं, जितनी भी वस्तु हैं, तो उनके अंदर परमात्मा रूप में भगवान स्थापित रहते हैं। भले वो अद्वितीय हैं, लेकिन वे अनेक योनियों में खुद को प्रतीत करते हैं, और उसी परमात्मा की बात कर रहे हैं। असौ गुणमयैर् भावः। असौ मतलब वह परमात्मा, गुणमयैर् यानी गुणों से प्रभावित। अभी परमात्मा गुणातीत है, लेकिन फिर भी अपने आप को गुणों में प्रवृत्त कर देते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं बावायर, यानी प्रकृति रूप से, प्राकृतिक रूप से। और फिर क्या करते हैं, सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी। सूक्ष्म इंद्रियां कौन सी होती है, मन, स्पेशली मन बुद्धि अहंकार होते हैं, तो उनके बारे में सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी, यानी सूक्ष्म में तो सूक्ष्म इंद्रिय मतलब इंद्रियों द्वारा आत्म भी, उनके द्वारा क्या करता है। देखिए पहले क्या करता है कि वो प्रकृति के गुणों को स्वीकार करता है, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो जीव आत्मा है उसको सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा इन गुणों से प्रभावित कर देता है। मन प्रभावित होता है सबसे पहले, और फिर वो क्या करता है, स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, जो खुद उन्होंने, स्वनिर्मितेषु का मतलब होता है अपनी ही सृष्टि जो उन्होंने रची है, निर्विष्ट उसमें प्रवेश करता है। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। और भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्, भुङ्क्ते मतलब भोग करता है, भूतेषु मतलब जीवों में, जीवों के अंदर बैठ के वो आत्मा भोग कर रहा होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है ना, तो परमात्मा हृदय के अंदर विराजमान हो गया, फिर उसको अनुमति देता है, अनुमति देता है कि ठीक है, हाँ तुम इन गुणों का भोग करो, इन जितने भी गुणों के द्वारा जो तुम्हारे हृदय के अंदर इच्छा आई है ना उनको भोग करो। स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तत्कुणान्, के उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं, उनकी अनुमति देते हैं कि तुम जाके भोग कर सकते हो। अनुवाद देखिए, परमात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित अपने द्वारा उत्पन्न जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो जो जीव उत्पन्न किए हैं, जो जो मतलब शरीर उत्पन्न किए हैं, उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें सूक्ष्म मन के द्वारा इन गुणों के प्रभावों का भोग करने देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि भगवान क्यों भोग करने दे रहे हैं और खुद क्यों आए हैं यहाँ पर उनके साथ, है ना। तो देखो, जैसे हमने कल एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि बच्चा जब जिद करता है कि मुझे कार ड्राइव करनी है, तो बाप क्या करता है, उसको ना प्ले लैंड में लेकर जाता है वहां पर, और कैसीनो में वो कार ड्राइव करता है। लेकिन ऐसा नहीं करता पप्पा कभी भी कि उसको बोले, बच्चे छोटा सा बच्चा है, उसको कभी, छोटे बच्चे को कभी हम नहीं बोलते हैं कि जाओ खुद ही जाके करो, लो पैसे देकर जाओ, ऐसे नहीं, उसके साथ जाते हैं। तो फिर और फिर वो सारा जो एंजॉयमेंट है उसको करने के लिए खुद वो कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि बाप भी उसके साथ कर रहा होता है, बाप को उसके एंजॉयमेंट से कोई एंटरटेनमेंट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे की जिद है तो फिर बच्चे को लेकर जाता है। तो फिर अक्सर उसके साथ अभी कोई खतरनाक जुड़े में वो बैठना चाहता है, जैसे थोड़ा सा डेंजर होता है, तो फिर बाप को उसके साथ बैठना पड़ता है ना, उसको पता है कि मेरा बच्चा अकेले तो गिर जाएगा। तो कितनी अनुकंपा है, भगवान अपने अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि मैं इन बच्चों को अगर अकेले ही जाने दूंगा, यानी कि अगर ये खुद ही इस दुखालय जगत में जाएंगे, फिर तो इनको कभी कुछ याद भी नहीं आएगा कि मेरे बारे में। तो फिर वो क्या करते हैं, इतना कितनी कृपा है भगवान की, कितनी अनुकंपा है कि वो अपने, हम सब भले कितने ही भगवान से विमुख होने की इच्छा करें, लेकिन भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। भगवान हर समय, कृष्ण परमात्मा के रूप में हमारे भीतर आकर बैठना स्वीकार करते। अभी कभी कभी बच्चे की इच्छा इतनी बुरी, यानी कि कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी खराब हो जाती हैं, इतनी दूषित हो जाती हैं कि हमें बहुत ही निम्न, बहुत ही दूषित शरीर प्राप्त होता है। कभी गटर का कीड़ा, कभी खटमल, कभी मच्छर, कभी चूहा, कभी ऐसे से शरीर हमको प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कभी ये नहीं सोचता कि नहीं भाई, मैं चूहे के शरीर में आना परमात्मा बन के कैसे बैठूं, ये गटर का कीड़ा है, इसके अंदर ये सुअर है, इसके अंदर मैं नहीं बैठ सकता। भगवान की कितनी कृपा है, भगवान हर, चाहे जीव आत्मा कोई भी इच्छा, किसी भी अपनी इच्छाओं के कारण करती है, किसी भी शरीर में चली जाती है, लेकिन भगवान जो है वो उसके साथ ही रहते हैं, सदैव साथ रहते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं ऐसा, ईश्वर है सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम, चाहे वो कुछ भी हो, कितनी कृपा है। हम भी अगर हम देखो इस संसार के माता पिता हैं, तो बहुत ही खराब, अगर कहीं पर बच्चा जाना चाहेगा तो हम बोलेंगे जान जाओ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं चलूंगा, ये मुझे बिल्कुल अच्छी जगह नहीं लगती है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं कि तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जिधर भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं असो वै गुणमयैर भावे, क्योंकि हृदय में इच्छा की इस भौतिक जगत को भोगने की, तो फिर भगवान ने भी क्या किया, गुणमयैर भावे, गुणों से बनी हुई इस प्रकृति को स्वीकार किया। वास्तव में जो भगवान है वो इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है इसे, लेकिन फिर भी क्योंकि जीव आत्मा की इच्छा है तो उसको पूरा करने के लिए भगवान इस संसार में उसके साथ साथ आते हैं। भगवान का दिव्य दान, उसको भी प्रकृति, ये वो भी भाव है, एक पर प्रकृति है, परंतु वो एक अलग प्रकृति है, भावन्यो, ऐसा आता है ना श्लोक नंबर 20 में, चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 20 श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की धाम के विषय में बहुत ही सुंदर भगवान बता रहे हैं। परतस्मातु भावन्यो वक्तो व्यक्त सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति के उसके अतिरिक्त, यानी कि जो भौतिक प्रकृति है उसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है, परस्मात् भावोन्यो, एक अलग ही प्रकृति है और जो शाश्वत है और इस व्यक्ति तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, जो व्यक्त और अव्यक्त यहाँ पर जो भी तुम्हें दिख रहा है उस सबसे बिल्कुल परे वो प्रकृति है। यह सर्वेषु भूतेषु, और यहाँ पर जब सारे प्राणी नश्यत्सु न विनश्यति, जब यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है तब भी भगवान के धाम में कुछ नष्ट नहीं होता, भगवान की प्रकृति ऐसी की ऐसी बनी रहती है। लेकिन वह प्रकृति, वह अपने भौतिक, अपने आध्यात्मिक जगत को छोड़कर भगवान इस संसार में गुणों को स्वीकार करते हैं अपने आत्मा की इच्छाओं को पूरा करण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी ब्रह्मा से लेकर निगरणीय चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करते हैं। अब हृदय के अंदर जैसी इच्छाएं मन के अंदर, उसके अनुसार और इस शरीर के अनुसार, शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक भोग करती हैं, चाहे वो ब्रह्मा से लेकर चिंटी तक जो कोई भी है, वो सब और सिर्फ अपने इच्छा के अनुसार भोग करने का प्रयत्न करते हैं। स्थूल शरीर सूक्ष्म मन की परिस्थितियों पर आधारित है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्थूल शरीर सूक्ष्म मन की परिस्थितियों पर आधारित है, यानी कि जो शरीर है वो तब तक उत्तेजित नहीं होता, इंद्रियां तब तक उत्तेजित नहीं होती हैं जब तक कि मन ना टक जाए। तो मन की जो परिस्थिति होती है उसी के अनुसार शरीर कार्य करता है। इच्छा होती, मन में इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो इच्छा उत्पन्न होगी तो वो कार्य करेगा। अगर मन एक चीज की तरफ आसक्ति ही नहीं है, जैसे अगर आप टीवी मूवी देखने जाते हो, थिएटर में मूवी देखने नहीं जा रहे हो, आप बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हो, आपकी इच्छा नहीं, मन हालांकि वो जगह ऐसी है कि मन आकर्षित हो लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं है, आप अपना काम करके आ जाओ फौरन। तो स्थूल शरीर जो है वो मन की परिस्थितियों पर आधारित है, इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। फिर क्या, जैसा भी मन इच्छा करेगा ऐसा भगवान आपको शरीर देगा, इंद्रियां उत्पन्न हो जाएंगे। जिसको जिस चीज की ज्यादा इच्छा होती है भगवान उसको वैसा ही शरीर देते हैं। और भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतया अक्षम है। अब जब तक भगवान उसकी सहायता नहीं करेंगे तो कोई भी भौतिक सुख वो जीव प्राप्त नहीं कर सकेगा, उसको अच्छे से नहीं, मतलब उससे आनंदित नहीं हो सकेगा। तो भगवान जो है वो परमात्मा रूप में जीव के हृदय में आके बैठ जाते हैं, क्योंकि भगवान की अनुकंपा है कि आपको यह सुख प्राप्त करने की इच्छा है, तो ठीक है मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, चलो तुम एंजॉय करो। जैसे अगर भगवान की सहायता ना होगी ना, तब जीव अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको पावर नहीं मिल रहा है, कहीं से अनुमति नहीं मिलती। जैसे अगर एक आप टॉय लेकर आओ, इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेकर आओ, आप उसको पावर प्लग में उसका स्विच लगाओ, लेकिन क्योंकि पावर प्लग को जनरेटर से पावर मिल ही नहीं रहा है और वो बिल्कुल ऐसे ही, उसमें कुछ पावर पीछे से बैक पावर नहीं है, तो फिर वो कभी भी इंस्ट्रूमेंट जो है आपका मतलब काम नहीं करेगा, वो टॉय आपका चलेगा नहीं। लेकिन जो पावर प्लग है उसके अंदर से जनरेटर जब उसको पावर देगा तभी जाके आपका टॉय जो है वो मूव करेगा। उसी तरह से हमारी आत्मा जो है, जब तक उसको परमात्मा का पावर नहीं मिलता है तब तक वो स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकती, स्वयं से आनंदित भी नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर बताया, वह भगवान परमात्मा के रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनता है, क्योंकि वह जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतया अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है, और भगवान उसे पूरा करने वाला है। जैसे बच्चे इच्छा करते हैं और पिताजी उसको पूरा करके देते हैं ना, तो भगवान भी ऐसे करते हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। जितने भी जीव संसार में हैं वो भगवान के अंश ही हैं, लेकिन वो भगवान से अभिन्न हैं। जैसे पुत्र और पिता का रिश्ता, वो पुत्र उसके शरीर का अंश है लेकिन फिर भी उसे अभिन्न है, लेकिन फिर भी तो उसके साथ चिपका हुआ तो नहीं है ना, एक उसका एक अलग अस्तित्व है, उसका एक अलग अस्तित्व है, लेकिन फिर भी वो उसी का अंश है। तो यहाँ पर आगे श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरों को विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। भगवान कहते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस जगत का पिता, माता पोषण करने वाला और पितामह हूँ। तो पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं। यानी कि अगर बच्चे को कोई दुख और सुख होता है तो इनडायरेक्टली बाप जो है वो भी उससे दुखी या सुखी होता है। कि भले हालांकि वो डायरेक्ट से उसको दुख नहीं दे रहे, लेकिन बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, तो फिर वो पिता के भी सुख और दुख होते हैं। तो भी पिता पुत्रों के सुख दुख से प्रत्यक्षता प्रभावित नहीं होता, यानी कि उस दुख को महसूस नहीं कर रहा है, वो दुख उसको नहीं हो रहा। जैसे अगर किसी बच्चे को बुखार हो तो इसका मतलब नहीं है कि वो टेम्परेचर उसका पिताजी को फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे से ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि प्रेम करता है ना उसी से। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान की मर्सी के विषय में बता रहे हैं कि वह इतना दयालु है कि जीव के साथ परमात्मा रूप में रह आता है और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करता रहता है। जिस प्रकार पिता पुत्र के दुख सुख को अप्रत्यक्ष प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसको महसूस करते हैं और उसके साथ उसका साथ देते हैं, उसी तरह से भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो भी जीव जिस भी कंडीशन में होता है परमात्मा उसका साथ परमात्मा के रूप में उसका साथ देते हैं और क्या कहते हैं, वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। यानी कि हृदय से प्रेरणा देते हैं कि यह जो सुख तुम भोग रहे हो ये वास्तविक सुख नहीं है, ये वास्तविक सुख हो ही नहीं सकता, वास्तविक सुख तो कोई और है जो हम अभी पढ़ रहे थे। परतस्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, वो सनातन जो भाव है, वो सनातन प्रकृति है, वो है वास्तव में ऐसी प्रकृति जहाँ पर तुम रियल में आनंद भोग सकोगे। जीव कभी भी अपनी इन भौतिक इंद्रियों से, इन अशाश्वत इंद्रियों से शाश्वत आनंद को नहीं भोग सकता है, क्योंकि ये शाश्वत जगत है, ये अशाश्वत है। और जीव जब तक ये रियलाइज नहीं कर लेता है कि भौतिक इंद्रियां मैं नहीं हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, तब तक वो आध्यात्मिकता में, जब आत्म साक्षात्कार जब तक नहीं होता है तब तक वो आध्यात्मिक आनंद को स्वीकार नहीं करता, आध्यात्मिक आनंद को महसूस नहीं करता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसे प्रेरणा देते हैं कि वास्तविक सुख कहाँ है। तो कैसी प्रेरणा देते हैं, श्लोक नंबर 34 में बताएंगे, कृपया मेरे साथ रिसाइट कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, भावयत् येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावन लीलावतारानुवर्तो देवतेयन्नरादिषु। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावन लीलावतारानुवर्तो देवतेयन्नरादिषु। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावन लीलावतारानुवर्तो देवतेयन्नरादिषु। भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावनः लीलावतारानु वस्तु देवतेर्यन्नरादिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावना लीलावतारानु वर्तो देवतेर्यन्नरादिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावना लीलावतारानु वर्तो देवतेर्यन्नरादिषु भावयत्येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावना लीलावतारानु वर्तो देवतेर्यन्नरादिषु भावय येष सत्त्वेन लोकान्वय लोक भावना लीलावतारानु वर्तो देवतेर्यन्नरादिषु। शब्दों का अर्थ देखिए, भावयत एष सत्त्वेन, भावयति अर्थात पालन करता है, एष इन सब का, सत्त्वेन सत्वगुण से जितने भी जीव प्राणी हैं उनका पालन करता है सत्वगुण से, लोकान यानी ब्रह्मांड भर में, लोकान वय लोक भावता, वय मतलब सामान्य, लोक भावना मतलब समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी, समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है और वो क्या करता है सत्वगुण से सबका पालन करता है। लीला वतारानो वर्तो, कितना सुंदर बताया, लीला यानी कार्यकलाप, अवतार मतलब अवतार, अनुवर्तो यानी भूमिका ग्रहण करते हुए, क्या करते हैं वो अवतार लेते हैं और लीला करते हैं, किस कैसे, देव तेर्यंग नरादिशु, देव मतलब देवता, तेर्यंग मतलब निम्न पशु, नरादिशु नर आदि मतलब और मनुष्य और जो भी हैं। इस श्लोक में दो चीजें बताई जा रही हैं, एक तो लोकान्वय लोक भावना, लोकान का मतलब होता है ब्रह्मांड भर में जितने भी लोक हैं, और लोकान्वय सामान्य, वय मतलब सामान्य, लोक भावना यानी समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, तो जो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं यानी भगवान जो हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो उन सबका पालन करते हैं, भावयत येष यानी पालन करते हैं, उसके अंदर बैठे हो सत्वगुण से उनका पालन कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरा काम भी करते हैं। अब किसका पालन करते हैं वो लास्ट में बताया, देवतेर्यंग नरादिशु, देवता हैं चाहे पशु पक्षी हैं चाहे मनुष्य हैं सबका पालन करते हैं, और उसके साथ साथ लीला अवतारानुवर्त, और उसके साथ अवतार लेते हैं और लीलाएं करते हैं, तो अवतार लेकर लीलाएं करने का कारण एक अलग है। वैसे तो देखो अगर उनको खाली यहाँ पर पालन ही करना होता तो फिर वैसे ही पालन कर रहे थे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के, जैसे सत्वगुण उन्होंने विष्णु, सत्वगुण से विष्णु, विष्णु में रूप में सत्वगुण को स्वीकार किया और उससे पालन हो रहा है, रजोगुण रूप से ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया रजोगुण को और सृष्टि का सृजन हो रहा है, और महादेव ने तमोगुण को स्वीकार किया तो इससे लय हो रहा है, वो तो सर्कल खुद ही घूम रहा है ना, फिर भी भगवान क्या करते हैं लीला अवतारानुवर्तो, फिर भी वो लीला करते हैं अवतार। अब लीला का क्या मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है, लीला का मतलब होता है कार्यकलाप, अवतार मतलब अवतार लेता है, अनुवर्तो यानी भूमिका ग्रहण करते हुए, वो एक भूमिका करते हैं वहां पर जिसमें वो खुद ही डायरेक्टर होते हैं, एक उन्होंने डायरेक्टर बन के एक स्क्रिप्ट लिखी होती है और उस पे आके एक्टिंग भी खुद ही करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को कोई बोलता है कि आपको ऐसे से करना है, लेकिन उसका कारण क्या है वो श्री गोपाल जी बताएंगे। पहले अनुवाद देखिए, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे लोगों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतार ग्रहण करके सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीला करते हैं। क्यों लीला करते हैं, सत्वगुण में जो है उनके उद्धार हेतु, क्योंकि अब रजोगुण और तमोगुण में आप कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकता, यहाँ पर ये बात भी क्लियर हो गई कि जब तक आपके अंदर इच्छाएं होंगी और जब तक आपके अंदर अज्ञान होगा, रजोगुण का मतलब होता है इच्छाएं कामनाएं और तमोगुण का मतलब होता है अज्ञान, और सत्वगुण का क्या मतलब होता है कि आप सत्वगुण में आओ तो ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए। और पहला ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि आप आत्मा हो, आप ये शरीर नहीं हो, लेकिन आपको करना क्या है, अब आपको किधर जाना है, आपकी गति क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, उसके लिए तो आपको कुछ तो पता होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी बस आपको पता चल गया सत्वगुण में आप आ गए। सत्वगुण में आना जो है वो लक्ष्य नहीं है, वो प्रोसेस है। तो उसके लिए भगवान क्या करते हैं, लीला अवतार अनुवर्तो, उन सत्वगुण में रहने वालों के लिए उद्धार के लिए लीलाएं करते हैं। क्या करते, तो इतनी ऐसी लीलाएं करते। वास्तव में भगवान की लीला है ना, वो एक ट्रेलर की तरह है। जैसे एक फिल्म होती है, अब आपको ना वो फिल्म का जो बहुत ही खूबसूरत एक ना ट्रेलर बनाते हैं, और ट्रेलर क्या करते हैं, कभी जो कमर्शियल ब्रेक होता है ना उसके अंदर बीच में डाल देते हैं कि भाई ट्रेलर देखोगे तो उसमें इतना खूबसूरत ये सब ग्लैमर होगा, ये होगा, वो होगा, डांस होगा, और इतने अच्छे हीरो हीरोइंस होंगे। तो फिर बीच में जब हम उस ट्रेलर को देखते हैं तो फौरन से आकर्षित होते हैं कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, उसको देखना है। कभी कमर्शियल के बीच में डालेंगे, कभी है ना पोस्टर्स लगा देंगे, कभी कहां पर, उस ट्रेलर को दिखाकर पता चलता है कि वास्तव में ये फिल्म कैसी है। ट्रेलर देख के ही हम फिल्म का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा होता ज्यादातर इस भौतिक जगत में ऐसा भी नहीं होता है। उसमें क्या हो सकता है कि ट्रेलर बहुत सुंदर हो और फिल्म पूरा कचरा हो, ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो क्योंकि पूरा का पूरा आध्यात्मिक, उसमें कोई भी आपको छल नहीं मिलेगा, कोई धोखा नहीं मिलेगा। जो आपको उधर मिलेगा वही इधर मिलेगा, एज इट इज। तो भगवान क्या करते हैं, लीला के द्वारा जीव मात्र को अपने आध्यात्मिक लोक की सूची देते हैं कि देखो तुम जो चाहते हो कि इन भौतिक इंद्रियों से, इन भौतिक वस्तुओं से तुम आध्यात्मिक आनंद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी इंद्रियां जो है वो भौतिक अज्ञान से आवृत होंगी तब तक तुम आध्यात्मिक आनंद का स्वाद नहीं ले सकोगे। अज्ञान से आवृत कैसे, जैसे अगर हमारी जीव को कोई है ना कोटिंग कर दे, प्लास्टिक कोटिंग कर दे, ठीक है, अब वो क्या हो गई, आवृत हो गई, ठीक है। अब प्लास्टिक कोटिंग कर दी और आपको बहुत ही सुंदर कोई चीज डिश के समझो रसगुल्ला देते हैं कि आप खाओ, तो आप रसगुल्ला खाओगे तो आपको टेस्ट आएगा, टेस्ट नहीं आएगा ना, टेस्ट जीभा को आता है और जीभा तो आवृत है। उसी तरह ये हमारी आध्यात्मिक जो आनंद है, जो शाश्वत आनंद है, वो भौतिक इंद्रियों पर क्योंकि अज्ञान का पर्दा है और काम वासना की तरफ से वो रजोगुण की और रजोगुण की कारण वो काम वासना को ही अपना नित्य आनंद मान बैठी है, और आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसका खत्म हो गया है, जिसके कारण वो इस भौतिक जगत में उस आध्यात्मिक आनंद का स्वाद नहीं ले सकती है। लेकिन भगवान फिर अनुकंपा करते हैं, लीला अवतार अनुवर्तो, फिर इस संसार में लीलाएं करते हैं, आते हैं, अवतार लेते हैं, और फिर जीव को ये बताते हैं कि आपका लक्ष्य ये भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए, तड़पने के लिए नहीं बनाया मैंने। तो कभी भगवान स्वयं आते हैं, कभी अपने ना भक्तों को भेजते हैं, है ना, कभी गुरु महाराज को भेजते हैं जो हमें प्रचार करते हैं, जो हमें बताते हैं। तो यदि हम उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं तो फिर हमें भौतिक आकर्षण से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक आकर्षण हृदय में उत्पन्न होता है। असल में बात यह है कि कोई भी चीज को समझने के लिए, कोई भी चीज को समझने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो श्रद्धा, उसके अंदर श्रद्धा होगी तो हम समझेंगे ना, उस पर यकीन करेंगे हम, जब तक नहीं जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी। जैसे अगर हम मार्केट से जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए और बोलते हैं 1 किलो दे दो, तो 1 किलो वो दे रहा है, वो नाप के दे रहा है, तो हम कभी उसके 1 किलो का बाट उठा के कहीं दूसरे है ना जगह पे जाके मशीन में जाके चेक नहीं करवाते हैं कि यह क्या वाकई में 1 किलो का है, कभी भी नहीं करते ना हम उस पर ये यकीन करते हैं कि ये इतना है। श्रद्धा है तभी जी रहे हैं, हर चीज पे श्रद्धा, हर एक में, अगर जैसे हम साइंस में भी देख लें कि जो चीज की हमें पैमाइश करनी होती है तो इसके लिए स्केल होता है, तो स्केल में क्या होता है, 1 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक है या फिर इस तरह, तो उस स्केल पे हमें विश्वास है कि यहाँ ये इसके ऊपर जो है लिखा हुआ है वो पूरा ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इंच है, यहाँ से कभी भी हम ये नहीं मान सोचते, हमारा माइंड उधर नहीं जाता है कि स्केल रखा हुआ है तो उससे गलत भी हो सकता है, नहीं नाप के किया मैंने, बिल्कुल परफेक्ट नाप है, मेजरमेंट बिल्कुल क्लियर किया है। तो जब हमारे ऊपर हमारे पास एक तो श्रद्धा होनी चाहिए तब हम उस चीज को समझेंगे, और दूसरा हमारे अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, पता भी होना चाहिए, हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए। और उसी तरह से भगवान के विषय को समझने के लिए भी हमारे पास एक तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और दूसरी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन भगवान को समझने के लिए हम बुद्धि का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी जितनी भी चीजें हैं उसको समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं 7.12 में, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, यहाँ पर संसार में जितने भी बुद्धिमान हैं उनकी उनको बुद्धि मैंने प्रदान की है, तो जो स्रोत है हम अपनी बुद्धि से उसका कभी भी उसके विषय में कभी भी हम जजमेंट नहीं कर सकते, जो स्रोत है जिसने हमें बुद्धि प्रदान की है, क्योंकि उसके पास तो असंख्य बुद्धि है, तो उसके विषय में हम बुद्धि लगा के कभी भी उसको समझ नहीं सकते। इसलिए अब भगवान को समझने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, क्या, श्रद्धा। हमें अगर हमें भगवान के अंदर श्रद्धा है, हम शास्त्र के अंदर श्रद्धा रखेंगे, गुरु साधु और शास्त्र, तभी हम भगवान को समझ सकेंगे। और कोई तरीका नहीं है भगवान को समझने का, समझ ही नहीं सकते। अब हमारी तो हम जैसे तुच्छ कीड़े मकोड़ों की तो कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा जी जो जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिनको स्वयं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनको स्वयं बुद्धि दी है, स्वयं हृदय में ज्ञान दिया है और भगवान ने स्वयं उनको है ना शिक्षित किया है, फिर भी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं पता है आपको, उन ब्रह्मा जी की प्रार्थना बहुत ही सुंदर 10वें अध्याय के चैप्टर नंबर 14 में ब्रह्मा जी की बहुत बहुत सुंदर प्रार्थनाएं आती हैं, कैंटो 10 चैप्टर नंबर 14 और टेक्स्ट नंबर 21 में बहुत ही सुंदर ब्रह्मा जी भगवान के विषय में कहते हैं, अत्यंत ही सुंदर शब्द हैं, कृपया उच्चारण कीजिए मेरे साथ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कुवीति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरो तीर भवत्रि लोक्यां, को वा कथिं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायां, को वीति भूमन भगवत् परात्मन योगेश्वरोति भवतस्त्रिलोक्यां, को वा कथं वा कति वा कदिति विस्तारयन् क्रीड्यसि योगमायां। को वेति भूमन, आप भूमन हो, आप इतने विराट हो, भूमन का मतलब होता है इतने विराट हैं और मैं इतना लघु, इतना छोटा सा निगरणीय प्राणी हूँ, तो आप ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, क्योंकि आप भूमन हो, भगवान, भगवान मतलब आप भगवान हो, परात्मन, आप परात्मन मतलब जितनी भी आत्माएं हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा हो, तो को वेति भूमन, ये भगवान तुझे कौन समझ सकता है, वेत्ति मतलब कौन जान सकता है, आपको कौन, किसी के अंदर इतना पावर नहीं है, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, किसी के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, को वेति भूमन भगवान परात्मान योगेश्वर होते, योगेश्वर अर्थात जितने भी योगी जन हैं उन सारे योगियों में आप ईश्वर हो, सब योग से कोई आपको नहीं समझ सकता, भगवत त्रिलोक्यम यानी कि जितना भगवत ये आपकी त्रिलोक्यम तीनों लोकों में आप जितने भी सब कुछ है, जितना भी ब्रह्मांड है उसमें आप इस तरह से व्याप्त हो और उति यहाँ पर लिखा हुआ है ना, योगेश्वरोति, उति का मतलब होता है लीलाएं। अभी हम लोग लीलाओं के विषय में पढ़ रहे हैं ना, भगवान की लीलाएं हैं, लीला अवतार। तो योगेश्वरोति भवतः त्रिलोक्यम, कि तीनों लोकों में भगवान की लीलाएं चल रही हैं, कंटिन्यूस चल रही हैं, कंटिन्यूस भगवान की लीलाएं हो रही हैं। लेकिन को वेति वुमन, इतना विराट है उनको कौन समझ सकता है। आगे ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर शब्द कहते हैं, को वा कथम वा कतिवा कदेति, को वा कहाँ कहाँ लीलाएं करते हो, कथम वा कैसी कैसी लीलाएं करते हो, कतिवा कितने कितने समय में आप कब कब लीलाएं करते हो, कैसे कैसे करते हो, कोई इसके विस्तारयन क्रियसी योग माया। विस्तार इसका इतना बड़ा है, और ये योग माया अपनी आध्यात्मिक शक्ति से आप जो कर रहे हो वो सब क्रियसी आपके लिए क्या है, क्रियसी का मतलब साफ साफ यहाँ पर लिखा है, खेल है आपके लिए। आप इतने महान हो, इतने भूमन हो, और ऐसी सी लीलाएं पूरे लोकों में आपकी लीलाएं हो रही हैं, और आप किस तरह से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप ये सब आपके लिए तो एक खेल है, लेकिन योग माया ने ये खेल ऐसा रचा है कि उसको कोई नहीं समझ सकता। तो ये भगवान ही है जिन्होंने इस भौतिक जगत का निर्माण किया है, वो केवल हम अपनी श्रद्धा से मानते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में चैप्टर 14 टेक्स्ट नंबर 3 में बताया गया, मम योनि महत् धर्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, के ये जो महत् ब्रह्म है, जो प्रकृति, जिस पहले भगवान ने इस प्रकृति की रचना की और फिर क्या किया, तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, इस प्रकृति पर दृष्टिपात किया जिससे ही गर्भस्थ हो गई ये प्रकृति, और फिर क्या हुआ, संभवतः सर्वभूतानां, संभवतः सर्वभूतानां ततो भवति भारत, तो फिर उससे हे भारत ये सारा संसार संभव हुआ, जितने भी सर्वभूतानां है उसकी संभावना कब हुई, जब भगवान ने इस प्रकृति पर दृष्टिपात किया। वृंदावन में एक बार सारे गोस्वामी जन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि भगवान ये यहाँ पर पुरुष कौन है, इस संसार में पुरुष कौन है। तो वास्तविक में पुरुष का क्या मतलब होता है, पुरुष का मतलब होता है भोक्ता, और प्रकृति का मतलब होता है भोग्य, जो उसको आनंद दे, और बाकी जो आनंद प्राप्त करता है वो केवल एक पुरुष। तो इस संसार में हम जितने भी जीव है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं। तो वास्तव में पुरुष केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, केवल एक ही भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो वही भगवान जो है वो क्या करते हैं, लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, और सत्वगुण से समस्त देवताओं और है ना मनुष्यों और पशु पक्षियों को पालन करते हैं, और जो वाक्य में सत्वगुण में आ जाते हैं उनके उद्धार करने के लिए लीलाएं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मांड अनेक है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक है, ठीक है, बहुत सारा विस्तृत है ये बहुत ज्यादा। अभी आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से कारणदर्शी साई विष्णु से के रोम कूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो बहुत बहुत ब्रह्मांड है जिनमें से विविध गुणों वाले नाना कोटि के जीव निवास करते हैं। अब जितने भी लोक हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, उसमें अलग अलग टाइप के जीव भी होते हैं। भगवान विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समाज में अवतार लेते हैं। अब सारे लोक में वो पहले अवतार लेते हैं, ठीक है, किस तरह से कारणदर्शी विष्णु से सारे लोक निकलते हैं, फिर गर्भोदर्शी शिरोदक्षिणा विष्णु के रूप में सब में भेज जाते हैं, और गर्भोदक्षिणा विष्णु के रूप में सबके हृदय में भेज जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बताया कि लोक में तथा प्रत्येक जीव समाज में अवतार लेते हैं, वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और जिससे उनमें भगवान के धाम वापस आने की रुचि उत्पन्न हो। लीलाएं क्यों कर रहे हैं यहाँ पर आकर, ताकि उनको आध्यात्मिक जगत की पहचान हो। भगवान अपने आदि दिव्य रूप को बदलते नहीं हैं, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार, यानी कि जो भगवान का रूप होता है देवी वो चेंज नहीं होता है, लेकिन जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार भगवान भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदत्त करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में प्रयोजन एक ही रहता है। अब वो खुद आए या फिर अपने किसी शक्ति प्रद जीव को भेजते हैं, लेकिन उनका प्रयोजन एक ही होता है। बताओ कौन सा प्रयोजन होता है, क्यों आते हैं? हाँ, आगे भगवान बता रहे हैं, श्रील रूपा जी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि भगवान का प्रयोजन क्या होता है। भगवान चाहते हैं कि वे दुख उठाने वाले जीव उनके पास आ जाए। यहाँ पर आने का, ये लीलाएं करने का, अपने पार्षद भेजने का, अपने भक्त भेजने का, गुरु भेजने का, भगवान का एक ही सिर्फ है ना वजह, कारण यही है कि भगवान चाहते हैं कि मेरे बच्चे और मजे दुख ना उठाएं, और फिर वो किसी न किसी तरह से आपको अपने आध्यात्मिक दान की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। कितनी कृपा है भगवान की कि जीव भले कितना ही भगवान से विमुख होना चाहता है, लेकिन भगवान उससे कभी भी विमुख नहीं होते हैं। सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों और भौतिक लोकों में कहीं भी प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आप हम जीव चाहता है शाश्वत सुख और ढूंढ रहा है भौतिक जगत में। अब भौतिक जगत में आध्यात्मिक वस्तु से कैसे प्राप्त हो सकती है? जीव आत्मा है और भूल गया है, इसलिए उसका ज्ञान क्योंकि आवृत हो गया है, तो फिर वो भौतिक जगत में आध्यात्मिक सुख ढूंढ रहा है, क्योंकि है तो आत्मा ना। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस सुख के पीछे वो दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों और भौतिक लोकों में उसे कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के दान के विषय में कुछ भी नहीं जानता है ना। वो चाहता है कि मुझे शाश्वत सुख मिले, लेकिन वो विस्मरण हो गया, उसको याद नहीं है कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये भौतिक जगत नहीं, भौतिक लोकों में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में आध्यात्मिक सुख ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल प्रकृति के गुणों के वश में आ गया और भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रमाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं, या तो खुद आते हैं या फिर किसी प्रमाणिक गुरु को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार करने वाले समाज में, मानव समाज में खाली नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्यों में भी चलता रहता है। वो करते रहते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा ये है कि मेरा बच्चा जो मुझसे विमुख होकर इस संसार में आ गया है, अब देखो भगवान की कितनी कृपा है, वो एक अंश से आपके अंदर बैठकर आपको गाइड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, आपको अनुमति दे रहे होते हैं कि ठीक है तुम्हें एंजॉय करना है तो करो, और दूसरे अंश से अब भगवान किसी भी तरह से आपको अकेला नहीं छोड़ रहे, फिर बाहर से भी, ऐसा नहीं अंदर से सिर्फ परमात्मा मन के बैठे उपदृष्टा कर रहे हैं कि हाँ भाई जो करता है करे, लेकिन है ना बाद में आपको शास्त्र दिए भगवान ने, ठीक है, इन शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो फिर हमें भौतिक जो है ना हमारी देहात्म बुद्धि आत्म साक्षात्कार में चेंज हो जाएगी, फिर हमें ये रियलाइज होगा कि हम ये शरीर नहीं है। तो शास्त्र दिए, गुरु महाराज को भेजा और साधुओं को भेजा, इसलिए कि भगवान चाहते हैं ये न के न प्रकारे इस जीव को यह रियलाइज करा दो कि इस भौतिक जगत में उसके लिए सुख नहीं है। भगवान ने बहुत जगहों पर लिखा है कि ये संसार जो है वो दुखों का घर है, यहाँ पर केवल दुख, परम पदम यत् विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत, कि हर जगह पर इसमें आपको दुखी दिखेंगे। आपको क्या करना है? एवं प्राप्य भजस्व माम, इस संसार में आकर तो मेरा भजन करो, इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं तत्त्व पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय, कि इस संसार में आकर तुम्हें काम करना है, मेरा भजन करो और ऐसी जगह की खोज करो, तत्त्व परम तत् परिमार्जितव्यम। भगवान बताते 15.4 में कि ऐसी जगह की खोज करो यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय, कि जहां पर जाने के बाद तुम्हें दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता ना पड़े, इस संसार में आना ना पड़े। और वो क्या है, भगवान कहते हैं तद धाम परमम भवा यद गत्वा ना निवर्तन्ति, ऐसा धाम जहां पर जाकर आपको वापस आना नहीं पड़ता, वो केवल और केवल मेरा धाम है। तो भगवान अलग अलग तरीके से जीव को ये शिक्षा देते रहते हैं कि यह संसार तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तुम्हारा शाश्वत सुख मेरे धाम में है, उसमें आओ। और भगवान श्री कृष्ण आगे हमें जो हम तीसरा आज तो यहाँ हमारा फर्स्ट सेकेंड चैप्टर समाप्त हुआ, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा शीर्षक द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांतात्पर्य पूर्ण हुआ। और आगे हमें भगवान बहुत ही सुंदर तीसरे चैप्टर में भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में पता चलेगा, और इसमें हम ये जानेंगे कि कृष्ण जो है वो समस्त अवतारों के उद्गम है, उत्स है। कृपया साथ रहिएगा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।